आपने उसे क्या कह दिया?
कुछ नहीं,
उसे आपकी बहुत फिक्र है। अस्सलाम वालेकुम डैडी।
वालेकुम अस्सलाम। बड़ी जल्दी उठ गई।
आपकी फिक्र लगी हुई थी।
मुझे भी तुम्हारी बड़ी फिक्र है, तुम्हारे बारे में ही ख्वाब देख रहा था।
या अल्लाह, डैडी क्या कहना चाह रहे थे? वो मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं?
पता है सारा, जब तक आदमी बच्चा होता है सोचता है कि उसे हमेशा इस दुनिया में रहना है, दुनिया कभी खत्म नहीं होगी। फूफियाँ, खालाएँ, मामू, चाचा सब लोग जवान रहते हैं, आदमी को बुढ़ापे का मतलब ही पता नहीं होता। और जब 20-25 साल गुजर जाते हैं तब जाकर उसे सफ़ेद बालों का मतलब समझ में आता है। दादा, दादी, माँ, बाप सबके बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं, बिल्कुल बर्फ़ की तरह। और जब 30-40 साल का हो जाता है तब उसे उम्र के गुजरने का एहसास होता है। दादा, दादी, माँ, बाप एक एक करके यहाँ से चले जाते हैं, मर जाते हैं। इंसान को अपनी मौत दिखाई देने लगती है। कब्रिस्तान और फातिहा। और अगर खुदा ने रहम किया और 60 साल तक कोई जी गया तो फिर उसके दोस्तों की बारी आती है। मेरा एक दोस्त था, ये वाला दोस्त, एक ही स्कूल में थे, बड़ा अच्छा दोस्त था ये मेरा, बड़ी याद आती है उसकी। कागज़ की गोलियां बनाकर कलम की नोक पर लगाता था और फूंक कर सामने बैठे लोगों की तरफ फेंक देता। क्या जमाना था, खुदा उसकी मग़फ़िरत करे। खुदा कितना अजीम है तू, तेरा शुक्र है। इंसान को कितनी खामोश, कितनी आहिस्तगी के साथ बुढ़ापे की तरफ बढ़ाता है कि उसे पता तक नहीं चलता कि अब वो बूढ़ा हो चुका है।
नहीं डैडी, माशाल्लाह अभी तो आप जवान हैं, इंशाल्लाह आप 100 साल जिंदा रहें।
अगर ये दिल दगाबाजी कर जाए तो आदमी मर जाता है बेटी।
आप ही तो हमेशा कहते थे कि मैं ही आपका दिल हूं।
तुम तो मेरा दिल ही हो, इसीलिए तुम्हारी शादी देखने की ख्वाहिश है। वो अमीर से कुछ बातें तय हुई थी?
बातें?
हाँ, शादी की तारीख अपनी अम्मी को भी तुमने बताया था?
वो बताया तो था, प्रोग्राम के मुताबिक अमीर की तालीम मुकम्मल होने के बाद, अलबत्ता अगर आप इजाज़त दें।
देर है, بہت دیر ہے، اس کی تعلیم تو مکمل ہونے والی ہے، تو پھر دیر کیوں؟
کیا مطلب ہے آپ کا؟
انسان جب کوئی فیصلہ پوری سنجیدگی کے ساتھ کر لے تو پھر دیر کیوں؟
وہ اصل میں ڈیڈی ان کے گھر والے
ہیں، مشہد میں ہیں، ایک پارٹی کریں گے، انہیں بھی بلائیں گے اور یہیں پر سب کچھ طے ہو جائے گا، شادی کی تاریخ بھی، یہ سب اپنی امی کو بھی بتا دینا۔
جی اچھا،
اب میں چلتا ہوں اور بے فکری کے ساتھ ایک نیند لوں، بڑا مزہ آتا ہے سونے میں۔ دیکھو بیگم، اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو جو تم نے اس طرح کی پوچھ تاچھ شروع کی ہے اس سے طبیعت خراب ہو ہی جاتی۔
کاش کہ کچھ آرام کر لیتے، اگر کوئی کام ہے تو احمد کر لے گا۔
تمہیں کس بات کی فکر ہے؟
یہ کاغذات کہاں لے جا رہے ہیں؟
ظاہر ہے مجھے کچھ کام کرنا ہے۔
مجھے نہیں بتائیں گے کہاں جا رہے ہیں؟
کیوں نہیں، رجسٹریشن آفس۔
رجسٹریشن آفس؟ تو پھر احمد سے کہہ دیتی ہوں آپ کو لے آئے۔
احمد کی مشکل خود اسی کے ذریعے حل ہوگی۔
گاڑی سے تو نہیں جا سکتے؟
کیوں نہیں جا سکتا؟
اور پہنچا دوں گی۔
یعنی اب میں گاڑی نہیں چلا سکتا؟
نہیں تو یہ کس نے کہہ دیا؟
اچھا تو میں چلتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ علی جان، دوپہر کو جب آؤں تو ذرا مجھے یاد دلا دینا یہ ناریل توڑنے ہیں۔
جی اچھا۔
ابھی رکنا۔
رکو سارا۔
ہاں اسٹارٹ کرو،
اسٹارٹ کرو۔
نہیں 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 نہیں،
کیا ہوا آرش؟
شارٹ سرکٹ بھی تھا بھائی، پیٹرول بھی نہیں۔
میں تو کہہ رہی ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ارے نہیں بھائی، ابھی میں صحیح کہہ
رہی ہوں۔ کوئی گاڑی ہوئی، میرے خیال سے تو کرین منگوانا پڑے گا۔
نہیں بھائی، ابھی صحیح کہہ دیتا ہوں۔
وعلیکم السلام۔
او ڈاکٹر صاحب، تو آپ زندہ ہیں ابھی؟
بھائی
آپ کی بیگاری کر رہے ہیں۔
صبح سے اب تک چند بار خراب ہو چکی،
کسی بھی طرح اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔
بڑی دیر تک انتظار کیا تم لوگوں کا، فکر ہو رہی تھی۔
وہ آپ ایک منٹ میرے ساتھ آئیے گا ذرا۔ فرزانہ تم پلیز گاڑی سنبھال لو۔
اچھا
معاف کیجیے گا، آپ کو بہت انتظار کرایا۔ اصل میں کل رات ڈیڈی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
کوئی بات نہیں، اصل میں مجھے بھی آپ کے ڈیڈی کی فکر ہو رہی تھی۔ اب کیسے ہیں؟
بہتر ہیں، آج تو بالکل ٹھیک تھے، لیکن میرے خیال میں کچھ چھپا رہے ہیں۔ کچھ ہوا ہے ضرور۔
نہیں فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو ان کے دل کا آپریشن ہوا ہے۔
نہیں، احمد کے کارخانے کے بارے میں کہہ رہی ہوں جہاں وہ گاڑی چھوڑ آئے تھے۔
میں کارخانے میں نہیں گیا تھا۔
میرے خیال میں تو مجھے خود ہی جانا پڑے گا وہاں۔
کارخانے؟ چلیں مان بھی لیں کہ وہاں کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ڈیڈی کی طبیعت خراب ہے، وہاں آپ کے جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟
تو پھر میں صحیح پریشان ہوں۔
السلام علیکم صاحب۔
تو تم ابھی گئے نہیں؟
جی آیا ہوں کہ میں اپنی بات کہہ سکوں۔
اب کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، سنیچر کی صبح آ کر اپنا حساب کر لینا۔
اتنی آسانی سے؟
ہاں اتنی آسانی سے۔
ٹھیک ہے، آپ خود جانے۔
اچھا تم کیا کر لو گے؟
کچھ نہیں، لگتا ہے کہ آپ کے والد کو پتا ہوگا کہ یہ بنڈل لگ کر کہاں جا رہے ہیں۔
تم مجھے میرے ہی ڈیڈی سے ڈرا رہے ہو؟
نہیں، یہ وہی نقلی بنڈل ہے جنہیں آپ کے والد نے کہا تھا کہ انہیں کھول کر ریٹیل میں بیچ دو۔
تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ڈیڈی مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں اور کیا نہیں چاہ رہے ہیں۔
جی ہاں، میں آپ سے کوئی نہیں بتا رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کے والد خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان بنڈلوں میں جو چائے ہے ویتنامی وہ کہاں جا رہی ہے۔
تم 6 مہینے سے یہی کام کر رہے ہو، یہ اتنی ایماندار کیسے ہو گئے؟
جی ہاں، اب میں پشیمان ہوں۔ اور اب میں یہ کام نہیں کروں گا.
تو روک لو, روک لو, اور جو کر سکتے ہو کر لو. چلو باہر, اب تنخواہ بھی نہیں ملے گی, سنیچر کو آنے کوئی ضرورت نہیں.
بہت اچھا, آپ نے خود ایسا چاہا ہے.
کوئی اسے اٹھا کے باہر پھینک دے ورنہ میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا.
کوئی ضرورت نہیں, میں خود چلا جاؤں گا, لیکن پھر ملیں گے آپ سے.
کیا بات ہے, بہت
خود ان سے پوچھو.
احمد صاحب, یہ ڈبے کہاں رکھے؟
میں ایک گودام کو پتا دے رہا ہوں, بس خیال رکھنا اس آدمی کو پتا چلے, میں خود ہی اس سے نپٹوں گا.
احمد صاحب, اس آدمی کو راضی کر لیں تو ہی ٹھیک ہے.
میں منا لوں؟ مجھے دھمکی دیتا ہے, اسے اندر آنے نہیں دو گے, میں خود ہی اسے دیکھ لوں گا.
کل اس نے آپ کے رشتے دار سے سب کچھ کہہ دیا.
کون؟
وہی جو کل آیا تھا گاڑی لے جانے کے لیے.
ہاں, امیر ناصری.
اور کیا,
ٹھیک ہے, جاؤ تم اپنا کام کرو.
جیسا ہو.
دیکھیے جناب, وارث کا رہنا ضروری ہے جس کا نام وصیت ہے.
میں نے تو سب بتا دیا تھا آپ کو.
میں نے بھی عرض کیا کہ اس سند اور اس کاغذات سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, وارث اصلی کاغذات کے ساتھ.
چلیں, تشریف لائیے.
آئیے آئیے, تشریف لائیے. جب وارث صاحب
سلام,
بیٹھیے, تشریف لائیے. کیسے مزاج ہے؟
اصل میں ایک دستاویز ہے اس گاڑی کی, ان محترمہ کے نام کرنا چاہتا ہوں.
معاف کیجیے گا, میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا.
بہت شکریہ, خدا حافظ.
خدا حافظ.
مجید صاحب, السلام علیکم.
السلام علیکم.
کئی برس بیت گئے, آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. احمد و سریا کی شادی میں دیکھا تھا, یاد ہے؟
ہر رات یاد کرتا ہوں.
لیکن ایک چیز بھول گئے, طے کیا ہوا تھا؟
ایک خاموشی. میرے خیال میں 20-25 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے.
تم کبھی بھول نہیں سکتے,
اور تم بھی نہیں بدلو گے.
یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے, احمد کو اتنا پریشان نہ کرو.
احمد؟
احمد میرے بیٹے کی طرح ہے, لیکن یہ تو مانتے ہو نا کہ باپ کی بات ہی اور ہے.
اس طرح کی طرفداری کا اندیشہ تھا, میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی جال میں پھنس جائے.
یہ کس لیے آیا تھا؟
مجھے معلوم نہیں, وہ تو آفیسر کے پاس اندر گئے ہیں.
بیٹھو.
ہیلو, السلام علیکم امی, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آنکھوں کا کیا حال ہے؟ تو کیا ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ اچھا, آپ کو تہران آنا ہوگا. ٹھیک ہے, کچھ دنوں میرے پاس بھی رہیے گا. نہیں, اصل میں میں نے سارا کے بارے میں بات کرنے کے لیے فون کیا ہے. میں نے ان کے والد سے بات کی ہے. نہیں, میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ تہران آئیں. ایک چھوٹی سی پارٹی ہے سارا کے لیے, لیکن ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی نہیں, بہت بہت شکریہ. تو پھر خدا حافظ. خدا حافظ. انہوں نے کہا کہ ٹیلی فون پر ان لوگوں سے بات کر لیں گی.
تو تہران آنے والے ہیں؟
نہیں, میرے خیال میں تو نہیں. البتہ امی کہہ رہی تھیں کہ میری بیماری کی وجہ سے منگنی کی رسم میں دیر نہ کرو.
آپ کی امی کو ہوا کیا ہے؟
ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہو رہی ہے.
مجھے یقین نہیں آتا کہ ڈیڈی میرے لیے رجسٹریشن آفس گئے ہوں گے.
احمد, تم اپنے باپ کو سمجھ نہیں پائے ہو, سب سے زیادہ وہ تمہیں کو چاہتے ہیں. لیکن
لیکن کیا؟
ان کی ساری فکر صرف تمہاری ہے, सोचते हैं कि कहीं बिजनेस में और ज्यादा फायदे के चक्कर में उल्टा सीधा ना कर बैठो।
मम्मी, कल या आज की बात नहीं है, जब से मुझे याद है आप लोगों ने फर्क किया है, आपने भी और डैडी ने भी। सारा आप लोग के लिए अलग है। पहले मैं सोचता था कि बचपन की जलन की वजह से मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन अब भी वैसी हालत है। डैडी को खुद नहीं पता कि मेरे साथ उन्होंने क्या किया।
अहमद, ये जलन एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगी। देते
पता है मी, पता है, लेकिन मैं भूल नहीं सकता। आपने और डैडी ने कभी भूलने दिया? कभी भूलने में मेरी मदद की?
बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो तुम सोच रहे हो।
हमेशा सारा।
अगर हमने उसके लिए कुछ किया, अगर उसके लिए कुछ खरीदा, तो उससे बेहतर चीज तुम्हारे लिए खरीदी। मुझे तो ये सब कहते हुए शर्म आ रही है।
लेकिन मुझे क्या कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि आप लोगों की लाडली सारा आज भी अपनी हरकतों से इस घर की इज्जत गंवा रही है।
अहमद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
किस बात की?
तुम्हारे डैडी ने इतना बड़ा कारखाना तुम्हें दे दिया और अब उसे तुम्हारे नाम भी करने वाले हैं।
हाँ, काश आप वहाँ होती और देखती कि डैडी ने मजदूरों के सामने मेरी कैसी बेइज्जती की।
क्यों?
कुछ नहीं, एक मामूली सी बात को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया, इतनी बेइज्जती की, अब आपको क्या बताऊं?
तुम तो कुछ नहीं बताते, अपने डैडी को भी जानते हो, कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे।
सारा साहिबा ने कुछ नहीं बताया?
क्या कह रहे हो सारा? मैं तुम्हारे डैडी को जानती हूँ, वो किसी से कुछ नहीं कहने वाले। ये जो बातें तुम्हारे लिए मामूली हैं, वो तुम्हारे डैडी के लिए बहुत बड़ी हैं। पूरी उम्र उन्होंने ऐसे ही गुजारी है, अब वो चाहते हैं कि तुम भी ऐसे ही बनो। ये तो कोई बेइज्जती की बात नहीं है।
और उस लड़के ने?
तुम किसकी बात कर रहे हो?
वही जो सारा का रिश्ता लेकर आया था, उसने कुछ नहीं बताया?
मेरी तो समझ में तुम्हारी बातें नहीं आ रही है।
वो तो पहली ही मुलाकात में मुझे पसंद नहीं आया था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था डैडी की वजह से तो ना।
ऐसी बातें ना करो बेटे अहमद, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो अच्छे लोग हैं, तुम्हारे डैडी ने पता लगवाया है और अब तो वो लोग घर वालों के साथ पार्टी में आने वाले हैं।
क्या, आपने उस लड़के को घर वालों के साथ पार्टी में बुलाया?
नहीं, नहीं, तुम्हारे डैडी ने।
यकीनन सारा साहिबा ने कहा होगा। बड़ी अजीब बात है, इस बार भी सारा ने फरमाइश की और डैडी ने आंखें बंद करके कबूल कर ली। इस लड़की को तो अकल ही नहीं है, डैडी और घर वालों की इज्जत का उसे जरा बराबर ख्याल नहीं है।
तो कुछ नहीं सुनते ना मेरी बात ना सारा की, ऐसी बातें कर रहे हो जैसे उसे बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हो। आखिर उसने तुम्हारे साथ कौन सा बुरा सलूक किया है अहमद?
आप समझ रही है कि उसने क्या किया है?
नहीं अहमद, तुम आज यहाँ एक हंगामा खड़ा करने के लिए आए।
हंगामा खड़ा हो चुका है, उसने खड़ा किया है। लीजिए, तशरीफ ले आई। गाड़ी की तो आवाज सुन ही रही होंगी आप।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। उस लड़के को पता चाहिए।
आपका मतलब नासरी साहब है?
हाँ उसी का।
किस काम के लिए?
मैं उसकी कल की हरकत का जवाब देना चाहता हूँ।
क्या किया है उसने?
लगता है रिपोर्ट पहुँची नहीं।
मुझे सचमुच भाईजान आप पर ताज्जुब होता है, कल तक तो आप हर बात का इनकार कर रहे थे और आज सारी गलती उनकी निकाल रहे हैं। आपने सचमुच डैडी के साथ जो किया है उसके बारे में सोचना नहीं चाहते?
रिपोर्ट मिल चुकी है।
तुम लोग क्या कह रहे हो, बस करो। किस चीज के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग?
ठीक है, बेहतर होगा कि इस बारे में मम्मी भी सब कुछ जान जाएं। डैडी की तबीयत अहमद की धामलियों को देखने से खराब हुई है, पता है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गए थे।
सुन रही मम्मी आप, अभी कुछ हुआ ही नहीं और इन साहब की मुदाखलत शुरू हो गई। कारखाने जाकर मजदूरों से पूछताछ की कि यहाँ हो क्या रहा है, उसके बाद आगे सारा साहिबा को पूरी रिपोर्ट दी नमक मिर्च लगा के। अगर ये मुदाखलत नहीं तो फिर क्या है?
मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है कि डैडी नहीं है, इसलिए तुम डांट टपट कर रहे हो।
हमेशा तुमने यही किया। जो दिल में आया वो किया, फिर डैडी के पीछे जाके छुप गई। तुमने डैडी की मोहब्बतों से गलत फायदा उठाया। सारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, उस लड़के से कहो कि कभी इधर दिखाई ना दे, अगर दोबारा नजर आए तो खुद मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। सुना तुमने मैंने क्या कहा?
अब चुप हो जाओ अहमद।
तुम्हें भी ये जान लेना चाहिए कि इस घर में सिर्फ डैडी फैसला करते हैं।
कपड़े की फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं अपना एक शानदार सूट तुम्हें दे दूंगा कर्ज के तौर पर, ठीक है?
मेरे ख्याल में इससे पहले जरा आईना देख लो तो बेहतर होगा, कपड़े कर्ज देने की बात बाद में करना।
अरे मैं अपनी शादी का सूट तुमको देने की सोच रहा था भाई, उस वक्त मेरा कद भी तुम्हारी तरह था और बदन भी। क्यों
अमीर साहब, ये पहले तो बहुत पतले थे लेकिन कुछ सालों से मोटे हो गए हैं।
मुझे भी याद है।
एहसान फरामोशी की भी इंतहा होती है भाई।
अब एहसान फरामोशी की क्या बात है, हम दोनों तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं।
मैंने हार मान ली।
कौन? अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए। लेकिन इस तरह तो ठीक नहीं होगा। अच्छा तो फिर मैं आता हूँ अभी। अहमद साहब, सारा के भाई।
अहमद साहब यहाँ क्यों आए हैं?
अजीब बात है।
बेहतर हम चले।
लेकिन मुझे फिक्र हो रही है।
तो मैं क्यों आया? इसलिए आया हूं चूंकि आपने डैडी की गाड़ी घर तक पहुंचाई है, तो जरा शुक्रिया अदा कर दूं। अलबत्ता अगर आप थोड़ा सा ठहरते तो मुलाकात हो ही जाती और फिर आपको इस तरह की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती।
ये तो मेरा फर्ज था।
हाँ, साफ साफ बात करो, ये फर्ज किसकी तरफ से था? सारा की तरफ? सारा ने तो फजूली में तुम्हें तकलीफ दी। ये तो मेरा काम था, मैं घर का बड़ा लड़का हूं और भी बहुत से काम है मेरे जिम्मे। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूं?
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
आपसे दूसरी बार मुलाकात हो रही है, लेकिन दो ही मुलाकातों में मुझे एक दिलचस्प बात का पता चला है, और वो ये कि आप पुरसुकून दिखाई देते हैं लेकिन हैं जल्दबाज आदमी।
अब मैं क्या अर्ज करूं, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है।
मैंने कहा साफ साफ बात करें। आपको तो ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि किसी को पसंद नहीं कि उसके घरेलू मामलात में कोई दूसरा दखालत करे। आप कुछ मिनटों के लिए कारखाने गए थे लेकिन इन्हीं चंद मिनटों में सब कुछ पता चल गया आपको।
आप कहना क्या चाहते हैं?
मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारा के लिए कोई कारनामा अंजाम देना चाहते थे। अब सारा ने आपसे कहा था या आपके खुद ही जहन में यह बात आई थी इसका नहीं पता मुझे, लेकिन मौका अच्छा था, है ना?
आप गलत सोच रहे हैं।
मुझसे ऐसी बातें मत करो। एक नाराज मजदूर कुछ बातें करता है और आप पूछताछ करके उसे और बातें उगलवाते हैं, फिर दो चार बातें उसमें मिलाकर राय का पर्वत बना के सारा को बताते हैं। क्यों, ऐसा है ना?
अहमद साहब, आप क्या बातें कर रहे हैं?
मैंने कहा साफ साफ बात करो।
मैं अब आपसे मजीद बहस नहीं करना चाहता।
कहां, मेरी बात पूरी सुनिए। हाँ, एक और बात है पार्टी के बारे में।
पार्टी?
हाँ, आप और आपके मोहतरम घर वाले हमारी घरेलू पार्टी में शामिल नहीं होंगे।
लेकिन ये तो आपके वालिद साहब की ख्वाहिश थी, काफी इसरार भी किया उन्होंने।
एक मिनट, यूनिवर्सिटी में भी तुम अपने असातिज़ा की बातें ऐसी मान जाते हो?
मुझे आपके वालिद से मिलना है।
आपका कहना नहीं कि डैडी इसरार कर रहे थे?
जी हाँ।
तो ठीक है, इंसान किसी पार्टी में शिरकत न करने के कई हजार बहाने बना सकता है, अलबत्ता अगर शिरकत न करना चाहे।
आप ये चाह रहे हैं कि मैं किसी बहाने से आपके वालिद की दावत को ठुकरा दूं?
हाँ, ये तुम बिल्कुल ठीक समझे।
मेरे ख्याल में इसकी कोई वजह नहीं है, आपके डैडी ने मुझे दावत दी है।
ये बात पहले भी आप मुझे बता चुके हैं।
ठीक है, तो फिर आप भी सुन लें कि मुझे अफसोस है कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता।
मैंने कहा ना, तुम बहुत जल्दबाज आदमी हो। सुनो लड़के, किसी पार्टी में शिरकत न करने के लिए हजारों बहाने बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी पार्टी में शिरकत करे जिसके नतीजे का कोई इल्म न हो तो वो पागल होना चाहिए। क्यों, ठीक है ना?
आप मुझे जल्दबाज कहते हैं जबकि आप तो खुद ही बहुत ज्यादा जल्दबाज हैं।
मैं? क्यों भाई,
आपको अपने डैडी की जगह लेने की बड़ी जल्दी है।
ये आखिरी बार है कि तुम मेरे और डैडी के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो।
मैं इस पार्टी में शिरकत न करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है।